राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधे ताई गौर हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल
जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 12 और 13 बोर्ड में 12 लिखा हुआ है उसको आवृत्ति करेंगे। सर्वे हमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः खेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे सर्वे हमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्त खेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेहि हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 12 को भी से चलते हैं। श्लोक संख्या 12 है तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पूयेत जेन हि पुमान अनुवर्णितेन। उसका अनुवाद है अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निसंदेह जहाँ तक कि मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरी प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके जस का श्रवण करे। तात्पर्य यह स्पष्ट है कि भक्तों को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो भक्ति में ऐसा अनुभव होना चाहिए, ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करूँ। ऐसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान को पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार न करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। श्लोक संख्या 13। सर्वे हमें विधि करास्तव स्व सत्वधामनो ब्रह्मादयो वयमिवेश नचोद्विजन्तः खेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे। अनुवाद। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है, क्योंकि ये दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे हमारे मैं तथा हमारे पिता असुर हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांत सुख के लिए है, आपकी लीला है। ऐसे अवतार सदा ही ब्रह्मांड के रक्षा, सुधार और अभ्युदय के निमित्त होता है। प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि उनके पिता, उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे थे, क्योंकि ये सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहने से अत्यंत भाग्यशाली है। जब भगवान इस धरा पर विविध अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे दो कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा और असुरों की विनाश। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उदाहरणार्थ नृसिंहदेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, उन जैसी लीलाओं निश्चित रूप से भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होती। फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे, अतः प्रहलाद महाराज आपने इस स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध त्याग दें। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज की स्तुतियां भगवान नरसिंहदेव के सामने। आज ये बोल रहे हैं 12 नंबर श्लोक में कि तस्मात् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महीं गुणामि यथा मनीषम। नीचो हम जया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट पूये तजेन ही पुमान अनुवर्णितेन। श्लोक 12 में तो शुरुआत करते हैं श्लोक तस्मात। अभी तक कितने श्लोक प्रहलाद महाराज बोल चुके हैं स्तुति में? अरे भाई दो दिन तो हुआ, दो दो करते हैं, आठ न आठ नंबर से शुरू किए प्रहलाद महाराज ने, आठ नौ दस ग्यारह बारह तरह आज है। तो चार श्लोक बोलने के बाद में देखिए प्रहलाद महाराज तस्मात, तस्मात शब्द का अर्थ जानते हैं ना, देयरफॉर, इसलिए। अब अभी तक जो चार श्लोक बोले थे इसमें, वो चार श्लोक में यही वर्णन किए थे कि ये ब्रह्मा आदि देवता सत्यमूर्ति विशेष शक्तिशाली और उनके सिद्धि ज्ञान क्या क्या नहीं उनके पास, योग्यता गुण आदि में सब में, और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। पहले आश्चर्य प्रकट कर बोले, आप क्या मेरे से सुनना चाहते हैं? उनसे खुश नहीं हुए, मैं खुश करूँगा आपको। दो श्लोक में आठ नौ में ये बताए, तो दस ग्यारह में बताए कि प्रभु समझ गया, मैंने समझ गया कि आप कोई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, मतलब अच्छे स्तुति से कोई सुर राग ताल और व्याकरण मुद्रा ये सब बढ़िया से करे आप पसंद नहीं बनते, होते तो उनके समान कौन है विश्व में, सबसे टप्पर रैंक में है ये देवता सिद्ध गंधर्व, उन्हीं से नहीं बना, मतलब आप उससे पढ़ते नहीं है। तो ग्यारह नंबर श्लोक में बोले, ये भी मैं समझ लिया, मन ने मैं मान लिया कि आपको कोई गुण अच्छा कुलीन परिवार में, कोई धन जप ये सब योग्यता, अरे योग्यता दूसरे की योग्यता छोड़ो, इविन ब्राह्मण भी द्वादश गुण समन्वित होने पर भी आप उनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि कोई चंडाल हो अगर आपके भक्त हो उसे प्रसन्न हो जाते हैं। केवल भक्ति अब मतलब है, ना कोई गुण है, ना कोई योग्यता है, ना कोई जाति है, ना कोई साधन है, कुछ नहीं देखते आपने, कुछ नहीं देखते हैं, योग्यता केवल योग्यता विचारे, केवल एक ही है क्या, कि आपके प्रति समर्पण है कि नहीं, आपके भक्त है कि नहीं, दैट्स इट, केवल एक ही योग्यता देखते हैं। तब इतने अभी डिसाइड मान लिए, जान लिया, सब देख करके सिचुएशन, इस श्लोक में असली स्तुति शुरू करते हैं, जिन स्तुति के लिए सारे देवताओं ने उनको रिक्वेस्ट किए थे, बोले बेटा प्रहलाद तू ही करो यार, हम हार गए, मैडम भी आकर चले गए, और आप ही करो, जो सारे देवताओं ने हाथ जोड़ कर प्रहलाद महाराज को अनुरोध किए थे, अब भी शुरू करते हैं। बोले अब तो मैं देख लिया उनको भी, ये सब आपको भी स्वभाव जान लिया, अब मैं साहस कर रहा हूं, तस्मात इसलिए, देयरफॉर क्या, तस्मात विगत विक्लव ईश्वरस्य, हे ईश्वर मैं अभी विगत विक्लव, अभी मैं कोई मेरे योग्यता के बारे में सोच नहीं सकता हूं, मैं पहले तो सोच रहा था सलाई आम आई एबल टू डू इट, लेकिन अब तो आई एम कन्फर्म, अब इसलिए मैं कन्फर्म हो गया, कोई योग्यता आपको चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं जो पहले जो डर रहा था वो डर नहीं, मेरे विगत विक्लव जो योग्यता के बारे में जो शंका मेरे मन में था अब छूट गया, ये विक्लव रहा नहीं, इसी से दूर कर दिया, विगत हो गया, गत हो गया, गत विक्लव जस्य सभी विगत विक्लव, ये जो मन में मेरा बहुत अड़गुन सा, मैं क्या करूं, पढ़े लिखे भी नहीं हूं, व्याकरण भी नहीं जानता हूं, अंग्रेजी भी नहीं जानता हूं, और संस्कृत भी नहीं जानता हूं, क्या बोलूं उनके सामने, ये जो मन में मेरा बहुत अधेड़ भवन बहुत शंका सब था योग्यता के बारे में, अब मैं कन्फर्म, ये कोई आपको जरूरत नहीं, आप तो हमारे ऐसी टूटी फूटी भाषा भी चलता है, कोई योग्यता गरीबी ये ऐसे कुछ नहीं देखते, पढ़ा अनपढ़ कुछ ना हो, तो इसलिए तस्मात विगत विक्लव, मैं इस विचार को छोड़ करके, हे ईश्वर सर्वात्मनाम अहि गुणामि यथा मनीषम, आप हे ईश्वर अभी आप तैयार हो जाओ, मैं आपको स्तुति करने जा रहा हूं, कैसे स्तुति करूंगा ना, सर्वात्मना मेरे पास जो समझ आप दिए, मैं छोटी बालक हूं, मेरा मन में मेरा बुद्धि में जो जो बात आता मैं तो ही बोलूंगा, मेरे समझ में सब बोलूंगा, हाँ तो इसलिए डोंट माइंड, प्लीज मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मेरे बुद्धि कहूं, तस्मात सर्वात्मना, मैं मेरा मन को पूरा लगाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा पास जो भी पोटेंसी है, जो मेरा मन बुद्धि है, पूरा पूरा लगाऊंगा, कोई कसर नहीं, कोई कृपणता नहीं करूंगा, कंजूसी नहीं, पूरा लगाऊंगा, है तो मैं सबसे नीच, लेकिन जो भी है मेरा पास पूरा ताकत लगा करके आपको स्तुति करूंगा, सर्वात्मना मतलब सर्व कुछ लगाऊंगा, मेरे का मन में समझ में बुद्धि में जो जो है सारे लगाऊंगा, करके क्या करूंगा, गुणामि आपके गुण, जितने आपके गुण में जानता हूं इतने तो बोलूंगा, मैं सब तो जानता नहीं, इतने बड़े बड़े लोग तेरा एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, छोटे बालक हूं, लेकिन जो भी मैं जानता हूं पूरी कसर मैं आपको करूंगा, जथा मनीषम जितने मेरे समझ में आ रहा है, मनीष मतलब मेरे समझ, जो मेरे समझ में आया अभी तक मैं देखा, मेरे पिताजी के मर्डर भी देखा, आपके प्रकट भी देखा, और सारे देवताओं के हाल अभी देख ही रहा हूँ और आपको भी देख रहा हूँ, ये सारे में जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सुनिए जथा मनीषम। फिर क्या कहते हैं, ना नीचो हो अजया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट। बोले मैं इसलिए भी मानो निशिंग पचान, बोले तो फिर मेरे सामने मेरे समझ गया तू इतने के साहस करेगा, कर किस लिए कर रहा है, तू समझ गया, समझ जा, चुप रहो, भक्ति करो, ये देखावटी क्यों कर रहा है, तू समझ गया मेरे स्वभाव गुण ऐसे फैलिए रे, भक्ति में तुष्ट होता हूँ, बस मान लो भक्ति करो, मेरे सामने आकर के सबके सामने तन तोड़ क्यों दिखा रहा है, क्यों नहीं। बोले मैं इसलिए कर रहा हूं यद्यपि नीचो अहम, मैं इतने नीच हूं कि किसी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके पास हूं क्योंकि मैंने अभी देख लिया कि आपको नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊंचे से कोई मतलब नहीं, किससे का मतलब नहीं, आपको भक्ति से मतलब है और मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं, यही साहस लेकर के मैं आया हूं, न तो फिर करना क्या जरूरी है, ठीक है समझ लिया क्या जरूरी है, न इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस दुखमय इस घोर संसार समुद्र में फंसा हुआ, मैं ही जन्म लिया हूं, इस भव संसार से मैं आया हूं, इस भव संसार से अगर कोई बचे, ये सर्व दुख से त्रिताप से कोई बचने के चाहे तो उपाय क्या है, पवित्र कैसे हो सकता पुयाति। बोले अगर आपके गुण कीर्तन करे तब उनका कल्याण होगा, मैं इसीलिए कर रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत था, अभी चांस मिला है, अभी तो प्रकट हुए, कोई फटोफटो नहीं लगाना, बस साक्षात बैठे सामने, ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति की पिक्चर, आप ही बैठे हैं और बड़े बड़े अधिकारी सब खड़े हैं, अब मुझे चांस मिला तो मैं क्यों छोड़ू, कि मैं जानता हूं यही स्तुति करने से मैं इस संसार समुद्र से पार पा जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे सुधार उधार हो जाएगा, पुयत जे न, जिस प्रकार पुयत मतलब पवित्र हो जाऊंगा, मैं फुल्ली प्यूरिफाइड हो जाऊंगा ये काम करने से। आपके गुण कीर्तन प्रोपर लिखते हैं हियरिंग एंड चैंटिंग, कोई श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान के गुण लीला को, वो अपना पवित्र हो जाएगा, अपना पवित्र हो जाएगा और वो कराएगा तो दूसरे को पवित्र कर सकता है, तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ अनुवर्णित है ना, बारम्बार वर्णना करूंगा, जो मेरा ताकत है पूरी लगा करके आप गुण आदि वर्णन करूंगा, कीर्तन करूंगा, क्योंकि इसी के द्वारा मैं सुधर जाऊंगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा इंद्रिय पवित्र हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, इसलिए मैं करूंगा, इसलिए अब मैं करना चाहता हूँ। अभी शुरू किए इस श्लोक में, 12वां श्लोक में, तब 13 नंबर में आते हैं, आकर बोलते हैं सर्वे ही अमी विधि कराम तव सत्व धाम ने। असली स्थिति में बोलते हैं कि ये सर्वे ही अमी, ये जो सब खड़े हैं सर्वे, ये विधि कराम मतलब आपके आदर्श पालन कार्य, विधि कौन है, आपका आज्ञाकारी, ये सभी आपके आज्ञाकारी दास हैं, विधि करा मतलब आपके अपॉइंटेड सर्वेंट है, आप उनको उनको विभिन्न विभिन्न को कार्य में लगा रखे, वो बेचारे आपके ऑर्डर को पालन करते हुए बेचारे ठीक ठाक करते रहते हैं, बेचारे जो भी उनका योग्यता के अनुसार आप उनको सेवा दिए हैं, आपके आज्ञाकारी बन करके बिल्कुल एस मैन बन करके बेचारे करते हैं, इसलिए विधि करा, विधि करा मतलब आपके बिल्कुल आज्ञाकारी दास। और केवल विधि करा नहीं है, सत्व धाम ने रियली क्वालिफाइड सत्व मूर्ति है, सत्वगुण में प्रतिष्ठित है, कभी गड़बड़ काम करते नहीं, झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं, अनिति अन्याय कुछ करते ही नहीं, उनका गंदे काम कभी करते ही नहीं, सत्य मूर्ति सत्व धाम नहीं, सत्व गुण के धाम है वो लोग सब, एक तो विधि करा सत्व धाम ने, और ब्रह्मादयो वयम, ब्रह्मादयो कहने की ये भी नहीं है कि कोई उनके कुल भूल हो रहे, आपके ही बेटा तो है, उनको पूछेंगे अब किस कुल में आओ, गोत्र पुत्र, गोत्र क्या आप ही का गोत्र है, तो आप इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ है ये ब्रह्मा आदि ये जो सो हैं, तो उद्भी जनता मतलब, लेकिन ये सब इतने गुणकारी आपके आज्ञाकारी दास होकर के सत्यमूर्ति होकर भी और सारे गोत्र सबसे टप प्रयाग में होकर भी बेचारे खूब डरे हुए, उद्भी जनता ये सारे देवता में देखा हूँ, ब्रह्मा में समेत आपके पुत्र समेत सारे जो गोष्ठी हैं सब सत्यमूर्ति आपके आज्ञाकारी दास वो सब भयभीत हैं, उद्विजनता। सब देखकर डर रहे हैं। क्यों? क्यों आपके जो अवतार है ये जो अक्षु देखकर डर रहे हो, उग्र रूप को देखकर डर रहे हैं? बोले यद्यपि मुझे पता है खेमाय भूताय आत्माय सुखाय चास्य, ये बोले मैं जानता हूं आप किस लिए आते हैं, आपका आने के पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। खेम शब्द का अर्थ है, आप भगवत गीता में खेम शब्द पढ़े ना, जोग खेमंग, उसका अर्थ क्या होता है? जोग और खेम का क्या अर्थ क्या गया इधर? जोग मतलब जो नहीं है लाकर सप्लाई दूं, खेम मतलब जो है उसको प्रोटेक्ट करूं, ये ना तो ये प्रोटेक्शन खेम आया। आप जगत को संरक्षण करने के लिए खेम आया, आप आए, अब हम खेम करने के लिए आते हैं, खेम आया और उताया, उसके उत्कर्ष करें और बढ़ाएं, जो जो नहीं है और सप्लाई दें और उसको और बढ़ाएं। और परिभूताय मतलब सब लोगों परिपोषण करें, पालन करें, और सुखाय चास्य और सुख प्रदान करें। सुखाय चास्य मतलब सुख दूसरों को बताने, खुद भी सुखी होते हैं, भगवान हिमसेल्फ आत्म सुखाय, वो स्वयं प्रसन्न होते हैं लीला के द्वारा, और दूसरे को तो सुख देते ही हैं, नाना बड़ा काम करते हैं। विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे, आप तो इसे आपने लीला से खेल खेल में ऐसे मनोहर रुचिर अवतार धारण करते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन अवतार के पीछे अपने उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि समस्त जगत को कल्याण करें, उनके जो है उनको प्रोटेक्ट करें, जो नहीं है उनको दें, उनको सुख वृद्धि करें, सभी को पालन पोषण समृद्धि करें और स्वयं आत्म सुखाय, आपने भी स्वयं सुख प्राप्त करें। ये लक्ष्य लेकर आए, उसका आपका कोई मिशन नहीं दूसरे को डराने के लिए, आप दूसरे को भय देने के लिए नहीं आते, आप ये सब काम के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सारे डरे हैं, वो आपके पार्टी के लोग, और उससे बदले बयम इबेसा, बोले मैं और मेरे पार्टी, मेरे पिताश्री और उनके संबंधी सब परिजन, ये आपके आंटी पार्टी के लोग हैं, ये तो सब आपके पार्टी के लोग हैं, और हम अपोजिशन पार्टी के, बयम मतलब मैं बहुत, मैं और मेरे पापा और जितने हमारे परिवार संबंधी सारे आपके आंटी अपोजिशन पार्टी वाले, क्योंकि भैरभाव हम असुर हैं, वो तो सब सुरगण है, आपके पार्टी के लोग हैं, हमेशा आपको मानते हैं, आपके आज्ञाकारी हैं, आपके काम करते हैं, और उसी के कंपैरिजन में हम रहे बदमाशी, हमेशा आपको नहीं मानेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपके भक्त को परेशानी करते हैं, ओ अब रिकॉर्ड आपको पता ही है, कब उससे हम पीछे नहीं हटते, ये सब काम करने वयम। और आप जो आपने लोगों को डरावना दिखाते हैं, बोले हम लोग तो बेशरम है, हम तो कभी आपको मानते नहीं और अन्याय पाप आदि करते हैं और असुर हैं, तो इसलिए हम डरते नहीं आपको, हम साहस रखते हैं, हमसे लड़ते हैं, मेरे पापा देखा ना लड़ा आपसे, भले मरा लेकिन लड़ा छोड़ा नहीं, भले मैं उनका बेटा हूँ और हमारे परिवार सब इसी गुण से बड़े हैं, हाँ इसी प्रकार हमारे स्वजन परिजन सब है भयम, कि आप जब भी आते हैं तभी नहीं छोड़ते हैं, खूब कसर करके गाली देते हैं आपको, लड़ते हैं आपसे, झगड़ते हैं आपके पार्टी के लोग, वैर विरोध हमेशा चलता है, जन्मजात विरोध है, और हमारा सामने उग्र रूप दिखाए, पापा को मार दिए, जो कि तब भी हम नहीं डरते, अरे जो आपके पार्टी के लोग है, जो बेचारे आपको हाथ जोड़ के ऐश में आने हैं, आपके आज्ञाकारी दास है, आपके काम करते हैं, सतगुणी है, उन बेचारा को इतने डराते क्यों? जिनको डराना था उसको तो मार दिए, फिर अभी भय क्यों करते हैं? इसलिए आप अभी भय त्याग दीजिए, आगे श्लोक से शुरू करेंगे, इससे ये बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं कि इस कारण से, डायरेक्ट नहीं कहेंगे उग्र रूप छोड़ दीजिए, बोले आप तो जब जब प्रकट होते हैं केवल इसी काम के लिए होते हैं, ये सारे काम के लिए अगर प्रकट होते हैं तो फिर उग्र रूप, बोले उग्र रूप में समझ रहा हूं, बदमाशों को धमकी देने के लिए उग्र रूप होता, बोले इसे कोई कोई भी कुत्ता है, सांप है, कोई इतर प्राणी भी, आप अपने जाओ तंग नहीं करो, वो अपने हिसाब से रहे अपना, लेकिन आप जाकर उनको थोड़ा मार दो, एक एक कुचल कुछ करो तो क्या होंगे? यद्यपि उनका इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी पूरा टेम्पर दिखा करके चढ़ जाएंगे, आवाज करेंगे, जो भी उनका है पारे गुस्सा दिखाएंगे। और उन लोग जो इस प्रकार हम असुर लोग हैं, हमेशा आपके विरोध बैर विरोध करते हैं, शत्रुता करते हैं आपसे और आपके भक्तों से, और अनीति अन्याय काम करते हैं। तो कभी कभी आप समझाते हैं, नहीं मानते हैं तो भाग दो थप्पड़ मारो समझाओ, तो हमारे लिए कोई बात चलता है चलो, लेकिन हमारे लिए जो आए मैं समझ रहा हूँ उग्र रूप, उनके लिए तो बेचारे तो देख रहे थे हमारे लिए उग्र रूप धारण करके आए गुस्से में, और आ करके जो करना था तो कर डाले, फाड़ फूड़ कर पापा तो डेडबड़ी बड़ा है अभी, और बाकी जो उनके पार्टी के लोग के सब मार चुके हैं, अब फिर भी इतने गुस्सा क्यों दिखा रहे, इतने उग्र मूर्ति क्यों? इस उग्र मूर्ति के कारण आपके जो आपने निज जन है, आपके भक्त है, आपके आज्ञाकारी दास है, आपके ही काम जो करते हैं आपकी इच्छा के अनुरूप, उन बेचारे डरे डरे खड़े हैं, बचे तो ही बाकी सुध मार चुके आपने। तो इसलिए आप कृपा करके, और आप कहेंगे कि नितू बचा है न, मैं बचा हूं, मैं तो डरता नहीं, हम असुर कुल हैं, हम डरने वाले थोड़ी बेशरम है, ये ब्रह्मा आदि पीछे हट गए, मैडम भी पीछे हट गए, लेकिन मैं चढ़ गया आपके कंधे पर, हम थोड़ी डरने वाले हैं, मैं हिरण्यकशिपु के बेटा हूं। तो हम नहीं डरते हैं, जो विचारे नहीं डरना चाहिए उनको डराते हैं अपने। तो इसलिए जिनके कल्याण के लिए, जिनके प्रोटेक्शन के लिए, जिनके संरक्षण के लिए, जिनके पोषण पालन के लिए हैं, उनको डराने से क्या फायदा, और जिनको इसे उग्र रूप किए थे वो तो मार मुर गए, तो अभी आप शांत हो जाए प्लीज। तो देखते हैं, देखिए प्रहलाद महाराज यद्यपि एक 5 साल के बालक है, टोटल इमैच्योर, अभी गुरुकुल में गया था, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ ना उसका, कहाँ वो कंप्लीट हुआ, जो 5 साल था 5 साल अभी भी है। अरे कोई एक कक्षा पार करने के लिए तो 1 ईयर चाहिए ना, 1 क्लास उत्तीर्ण होने के, 1 क्लास उत्तीर्ण नहीं हुआ था, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, झगड़ा हुआ, स्कूल से निकला है, मैंने रिकॉर्ड खराब उनका इसे स्कूल में रिकॉर्ड खराब है, क्या बोलते हैं कि येल्लो ग्रीन और क्या क्या रेड देते ना, वो रेड डबल रेड लगाए एक बार नहीं पिताजी उनके थे हेड करके गवर्नमेंट सरकार थे, इसलिए तो बेचारे डायरेक्टर स्वीकार किया, नहीं तो वो भी स्वीकार नहीं करता था, पहली बार ही वो उनका दम तोड़ गया था, लेकिन सरकार के ऑर्डर हुआ, स्पेशल ऑर्डर, तो दोबारा स्वीकार किया, क्योंकि दोबारा ये इसे काम किया कि कभी भी स्कूल ही खत्म कर दिया, सारे स्टूडेंट को गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे है आप, और हम इस प्रकार से हैं, और लेकिन फिर भी यद्यपि अभी पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन देखिए उनका मन में विचार कैसा है, जब उनको ब्रह्मा आदि देवताएं प्रार्थना किए कि बेटा प्रहलाद तू ही शांत करो, सबसे पहले तो जिनको देख करके ब्रह्मा रुद्रादि डर गए, लक्ष्मी तक डर गए, वो निडर, वो निडर होकर के गए, और बालक है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, कोई अनुयायी नहीं, अकेले गए, ये निर्भयता, क्यों ऐसी निर्भयता, वो बड़े ग्रुप हैं, करोड़ों संख्या में देवता, वो इतने बड़े ग्रुप होकर भी डरते हैं, और ये अकेला डर नहीं रहा है। तो कोई पूछे तो बोले वो डरने का जो भाव है वही आपने ही तो मुझे खत्म कर दिए, निडर मुझे कर दिए। बोले क्यों? बोले पापा मुझसे इतने इतने जो जो संसार में भय दिखाना सब दिखा चुका था, ये कोर्स में कंप्लीट कर चुका, जब मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका तब डरने गए भाई एक आर्मी में एक होता है कमांडो कोर्स, आप में से कोई आर्मी वाला नहीं है ना, सबसे खतरनाक कोर्स होता है, जो कमांड कोर्स करते हैं तो दुनिया में कुछ भी करने कर सकते हो, फिट फॉर एवरीथिंग, कुछ भी करो डार्लिंग। तो इसे मैं तो ये सुपर कमांड कोर्स करके आया हूँ, क्या क्या इससे जो नहीं है, जो पिताजी ने मुझे नहीं मराना है किया बचपन के अवसर, और सारे कंप्लीट करके आया हूँ बाकायदा, रिकॉर्ड रखा होगा, फोटो लिए होंगे, कोई रिकॉर्ड किए होंगे, तो फिर आप मुझे डराएंगे क्या बोले मैं अब तो तभी डरा कैसे नहीं है, बोले डरा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मन और आत्मा में ग्रह लग गया था, जैसे कहते ना शनि राहु ग्रह लग जाता है, और ग्रह दशा पड़ा था, कौन सा ग्रह ना किस न ग्रह, आप ही लगे थे ग्रह में, आप ही मेरे मन को मेरे आत्मा को ग्रास कर चुके थे, मैं तो दुनियादारी में कुछ सोच भी नहीं, देख ही नहीं सकता था, जहां देखा
जत्र जत्र मेरा दृष्टि, जहां जहां दृष्टि जाता है वो मैं कुछ समझ नहीं देखता था, जहां जहां दृष्टि पड़े ना स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है वे तार इष्ट देव स्फूर्ति, मेरा तो केवल आप ही दर्शन होते थे जहां जहां जिस जिसमें देखता था। वो हाथी लाए मुझे कुचल देने के लिए, मैं आपको देखा, आप मुझे कुचलेंगे थोड़ी है? वो मुझे पर्वत की चोटी से लेकर के फेंक दिए नीचे, मैं देखा कि पापा जी हाथ बढ़ाकर खड़े नीचे, हमें तो सुख में किलकारी मार के नाचने लगा, और एक बार पापा खड़े नीचे हाथ पसार के, फिर कैसे डरूं, समुद्र में लेके फेंक दिए तो पापा पकड़े हुए हैं, फिर क्या डर है। गोविंद परिरंभितः, बोले हमेशा आपने आपके आलिंगन में मुझे ले रखे थे, आप मुझे गोद में लेकर बैठे थे। बोले जैसे छोटे बच्चा एक आध साल का हो तो उनका कोई टेंशन है, टॉयलेट जाना है, पेशाब करना है, खाना है, कुछ करना है, ड्रेस पहना है, हु केयर्स, ना लाज ना शर्म ना नथिंग, कुछ नहीं, वो जानता है मम्मी सब करेगी, एवरीथिंग वो ही करेगी सब, वो तो ऐसे ही। बोला मेरा तो मैं बिल्कुल बेधड़क चिंता सुने के आप ही करेंगे, आप ही के गोद में बैठे बैठा हूँ, वाट एवर टॉयलेट पेशाब एवरीथिंग एवरीथिंग गाली गुलाब सब आप ही टेक केयर करेंगे, तो मेरा क्या चिंता है, मैं तो आपके गोद में बैठा था। पापा ने सकड़ो उपाय किया, मैं जानता हूँ क्या करेगा, क्योंकि आपके गोद में बैठा हूँ, आप अपने हिसाब से डील किए, मुझे क्या करना अपने हिसाब से डील किए। सचमुच प्रहलाद महाराज जान चुके हैं कि भगवान नरसिंह देव का जो अति भयावना रूप, बोले इसी भय क्यों दिखाते हैं, बोले भय इसलिए उनका है क्योंकि बहुत दिन से भय स्टक पड़ा हुआ था उनके पास, हाँ बहुत दिन से स्टक रखा हुआ था और उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। बोले क्यों यूज नहीं कर, बोले जिस दिन से पापा ने सेकंड टाइम स्कूल से मुझे बुला करके पूछा, बोला बेटा बताओ आप गुरु जी से जिसको पढ़ा है अब तक उसमें से कोई अच्छा एक बात बताओ, अब तुझे कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है, कौन सा शिक्षा अच्छा बताओ, धर्म अर्थ काम कूटनीति राजनीति ये सब कुछ मुझे कोई बताओ। तो प्रहलाद महाराज सोचे, बोले पापा मुझे पूछ रहे हैं बड़े सीरियसली, मैं गुरु जी से जो सीखा हूँ इसमें से कौन सा अच्छा बात बताओ। बोले ये दोनों जो गुरु जी मेरे खड़े हैं संड अमर कर, ये दोनों के अंदर गुरुता तो है ही नहीं, वो गुरु कैसे हो सकते हैं, भाई उनके अंदर कोई योग्यता कोई गुण नहीं है जो मुझे मेरे गुरु बन सके, कोई गुरुता तो है नहीं उनके अंदर। तो फिर लेकिन पिताजी मुझे बोलते हैं कि गुरु से जो सीखा उनसे तो मुझे सीखा ही नहीं, वो तो थर्ड क्लास पढ़ाते हैं, मुझे कोई इच्छा ही नहीं उसको बोलने की, तो मैं सीखा क्या, हाँ बाकायदा वास्तविक जब मैं कुछ सीखा हूँ मनन किया हूँ और याद किया हूँ, मेरे असली गुरु जो हैं सैयद देवर सिंह नारद है, उनसे मैंने वर्षों सीखा हूँ, लेकिन पापा को पता नहीं, ये रिकॉर्ड उनको पता नहीं है। और तो माँ ने छिप करके नारद आश्रम में थे इतने हजारों साल, पापा को तो पता ही नहीं है असली गुरु जी तो मेरे नारद जी हैं, अब उनसे मैंने जो सीखा हूँ वो वास्तविक गुरु हैं, उस शिक्षा से कुछ बताऊँ अच्छे बात। अब पिताजी बोले जो साधु मन को अच्छा बात बताओ गुरु जी सीखा, तो बोला प्रहलाद तैयार हो गया, बोले सब डिस्कलो क्यों गुरु, वो अच्छा बात पूछा अच्छा बात बताओ, जो नारद जी से मैंने पढ़ाऊँ जो सिखाऊँ उनमें से सबसे अच्छा बात बताऊँगा। और नारद जी से जो हजारों साल उन्होंने टीचिंग लिए थे ट्रेनिंग लिए थे उनमें से सबसे अच्छा बात था नवधा भक्ति विष्णु के लिए। तो सीधा बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, पिता के गोद में बैठ करके उनके सामने प्रकांड विष्णु द्रोही उसी के सामने बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुनसार पिता विष्णु भक्तिश्चय नवलक्षण। इस प्रकार भक्ति करना है, किस प्रकार न अर्पण करके फिर भक्ति करना है, पहले भक्ति करके बाद में अर्पण कर हम जैसे करते हैं, बोले ये नहीं असली भक्ति का सिद्धि। इति ही पुनसार पिता विष्णु, पहले विष्णु को अर्पण सब करो, जो जो आपके पास मन इंद्रिय आदि आदि देह सब अर्पण कर दो, फिर जाकर भक्ति आदान करो, पहले करके बाद में सकड़ंग परस्मय, बोले ये सब थर्ड क्लास है, स्टाम्प लगाना है ना नहीं। जैसे कभी कभी अभी गर्मी सीजन है, आज तो थोड़ा काली बारिश हो गया ठंडा हो गया, नहीं तो लोग कमरे में होते क्या गर्मी है कैसे क्या करूं बाहर निकलना नहीं होता है ना नहीं। मैं जिस दिन आया था उस दिन 37 टेम्परेचर था, अब तो पता नहीं एक दो बड़ा होगा कि घटा होगा, तो अच्छा है भगवान की कथा की, तो भगवान ने ठंडा कर दिए, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई था। तो हाई टेम्परेचर में आप भले भगत हो चाहे जो भी हो, घर में जा कर बैठे, अब इतना गर्मी है, बाहर में लू चल रहा, चलो चलो क्या आज खाना बना, प्रसाद बनाए, तो खाना नहीं बोलते प्रसाद बोलते हैं, क्या बनाए यार, यार जूस बनाओ, आइस डाल करके चकाचक कुछ ऐसे लस्सी है ना, नहीं और ऐसे गरम दाल बाटी चूरमा कि पराठा पनीर ये बनाते अभी भी, वो तो ठंडी में चलता है, गर्मी में तो कुछ ऐसे जो शीतल पदार्थ हो इस प्रकार बनाए। तो वो जो आपने बोले बनाओ करके, ये किससे कंसल्ट करके बोल रहे हैं, आपको चाहिए गर्मी से बचने के लिए चाहिए इसलिए ऑर्डर दिए, ये आप कभी मन में सोचे कि भाई राधा माधव को मैं चढ़ाऊंगा भोग, उनको पसंद है कि नहीं, उनको चाहिए तो चंदन लगाकर पूरा सब 12 घंटा खड़े रहते हैं, वो फिर लस्सी पियेंगे, उनको बीमारी होगा कि क्या होगा, ये कोई कंसल्ट किया नहीं, मुझे गर्मी लग रहा है तो बनाओ इसे, जब बना दिया बढ़िया से बनाया जूस, अरे भोग लगाओ इसे थोड़ी, हम भगत हैं, भोग लगा के लो, डू यू अफर आर नॉट, अफरिंग किया ना नहीं, ऐसे पूछते हैं खाने से पहले, अरे तुरंत हाथ ले चुके हैं, पकड़ चुके हैं, अफरिंग किया ना नहीं, ओह बोला प्रभु जी आपने जल्दी कर रहे थे तो अफरिंग में किया, कैसे किया ना, मार ताली उठा थाली और क्या करना आप यहां से चिल्ला रहे लाओ रे घंटों क्या कर रहे यार, हमें उठाया अभी ओ भगवान जाने कैसे अफरिंग हुआ, अब ला के दिया, हाँ तुलसी पता देखो ना, हाँ 50 ग्राम डाला हूँ ऐसे थोड़ी सारे जितना मंजिल फिंदर रहता सब डाल दिया हूँ, हाँ तब तो तुलसी पता डाला है तो अफरिंग है, अब भगवान को पूछे तक नहीं भाप को ये पसंद है कि नहीं, अब खाए कि नहीं, अब दिया थोड़ा टाइम दिया ना यहाँ पीने के, कुछ नहीं सीधा वास उठाए और घपा घप मारे, अब बोलेंगे हम प्रसाद खाते हैं, हमें इसे थोड़ी खाते हैं, हम तो भगवान, अरे भैया तू बनाया तेरे लिए, ऑर्डर भी दिया तेरे लिए और खाया भी तू ही, तो काहे को भगवान का नाम देता है, तो इसलिए देता हूं कि मैं भक्तों स्टाम्प लगा दिया प्रसाद, तो इसी को कहते हैं आरोप सिद्धा, भक्ति तो है नहीं, भक्ति का आरोप लगाए नहीं हम इसे किए, इसी को बोलते नहीं, पहले आप अपने लिए करेगा और ठप्पा लगाएगा, ये नहीं है प्रहलाद महाराज जी, इति पुनसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण, पहले पुरुष को होना चाहिए पहले अर्पण करे अपने आप को, अपना अपन कुछ नहीं रहेगा ना, मेरा मन मेरा सोच मेरा बुद्धि मेरा चाह कुछ नहीं, उन्हीं का मन उन्हीं का सोच उन्हीं के चाह, उनसे पूछूं मैं तो उन्हीं के हूं, मैं गर्मी में मर भी जाऊं अगर उनको ही चाहिए मुझे वही करूंगा, मैं उन्हीं का हूं, मेरा कुछ भी नहीं मेरा, तब जा करके जो नवदा भक्ति नव प्रकार के आचरण उनको हो करके उनका हो करके उनको समर्पित करके तब जाकर करने से तब इलक्षण भक्ति होगा, नहीं तो भक्ति नहीं माना जाएगा, आप अपना में रहो और उनके नाम में काम चलाओ इसे नहीं चलेगा। तो ऐसा कह करके अपने पिताजी को सिखाया कि इस प्रकार आप भी विष्णु को समर्पण कर लीजिए, विष्णु पाद समर्पण, अरे पिताजी बोला देखो उनके खास चाचा को जो मर्डरर है मेरे सामने उनके स्तुति गाया जा रहा है, अब चिल्ला करके उठाकर गोद से उठाकर पटक दिया, पटकाया और इतने दुत्कारा इतने गाली गुलस दिया, मर्डर के अर्डर दिया, मर्डर करने का अर्डर डाला उस दिन कला और कई प्रकार युक्ति समय इसे मार देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जन्म समय से ही जन्म से पहले ही से भगवान के भक्त थे, आपको पता है प्रहलाद महाराज कितने दिन गर्भवास किए, आप बड़े बड़े लंबा समय सुखदेव गोस्वामी के सुने होंगे, अरे तो 12 साल रहे, हम लोग तो 8-9 महीना के अभिज्ञता है, सुखदेव गोस्वामी कितने दिन रहे, 12 साल 12th grade तक रहे उन्होंने, लेकिन सबसे रिकॉर्ड तोड़ गर्भवास किए हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने केवल 36,000 years केवल 36,000 साल गर्भ में रहे, इतने भयानक, लेकिन उनको कोई भय नहीं था, नारद ऋषि के आश्रम में रहे, ये उनका पीबीटी ट्रेनिंग था इतने दिन का, ट्रेनिंग दे रहे थे, नारद जी से ट्रेनिंग दे रहे थे। ओ, एक गर्व छत्तीसगढ़ बोले नहीं, ये गड़बड़ी रहस्य है उसका पीछे, क्योंकि कैद माता जो इंद्र ने उनको रास्ता में छोड़कर चले गए, बोले मैं घर कैसे वापस जाऊं, वो है ही नहीं घर में, वो घर में नहीं है, और असुर मुझे किडनैप करके ले जा रहा था, पता नहीं अब मैं जाऊं अगर मेरे डिलीवरी हो जाए और वो कब आएंगे पता नहीं, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे मेरा डाउट है कि उनका बेटा करके, मेरा अब ये डर है, नाराज जी कुछ की हेल्प कीजिए, वो आ जाएंगे वो मानेंगे कि नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं भगत है, कि नाराज जी अनाउंस करें इंद्र को ड्रम का, बोले अरे ये असुर नहीं है, ये तो साक्षात अनंत अनुचर है। जब नाराज जी ने इंद्र को बोले हुए कैद माता खड़ी सामने बोले कि अरे उन्हें हिरण्यकशिपु के बेटा को असुर नहीं होगा, वो बोला तो जूनियर हिरण्यकशिपु, नहीं 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 तुम मूर्ख नहीं जानता, उनके अंदर तो साक्षात महाभक्त साक्षात अनंत अनुचर है, कोई संसार में बलि नहीं उसको मार सके, तुम क्या मारोगे उसको। इंद्र ने डर गया बात सुन करके नाराज जी को, इंद्र ने तो क्षमा मांग करके चला गया। कैद माता सुनी नाराज जी के स्टेटमेंट, क्या सुनी कि मेरे अंदर हिरण्यकशिपु के प्रोडक्ट नहीं है, ये तो कुछ अलग प्रोडक्ट है। बोला अगर मैं अभी नवा महीना में अगर वो डिलीवरी हुआ और वो प्रभु जी तो है ही नहीं, वो आएंगे कब पता नहीं, और देखेंगे कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ अलग है, इंग्रेडिएंट सब कुछ अलग दिख रहा, तो वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, मेरे ऊपर डाउट करेंगे, बोलेंगे मेरा बेटा है ही नहीं, तब तो मुझे बिल्कुल आप ही खुद बोली रहेंगे तो दूसरा प्रकार की होगा, ये असुर वंशज नहीं है, वो तो साक्षात महाभक्त है। तो उन्होंने प्रार्थना के बोले बोले प्लीज हेल्प मी, मैं क्या हेल्प करूं ना, नहीं आप बोलते हैं नहीं वही तो भक्त है ना, नहीं 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 तो फिर आप ऐसा कीजिए कृपा करके जब तक मेरे स्वामी ना आ जाए तब तक उसको पांच बटन दबा दीजिए, पांच बटन समझते ना, अरे एक होता ना टेप में आजकल तो सब चिप्स में सुनते हैं, वो एक छोटा होकर काम में चले गए तो पांच बटन दबा दो तो वहीं पर रहेगा, फिर जब ऑन करो फिर वहीं से चालू होगा। बोले जब तक गर्भ है दो चार महीने का वहीं से स्विच ऑफ कर ऑन कर दो ताकि वहीं रहेंगे स्टक, स्टॉप हो जाए, जब तक हमारे पति आ जाए तब फिर वहीं से शुरू होगा, ऐसे कर दो। तो नाराज जी शक्तिशाली थे, वो पांच बटन ऑन कर दिए, उनके गर्भ बढ़ा ही नहीं न घटा ही नहीं, सेम पोजिशन में रहा, सेम पोजिशन में आगे नहीं पीछे नहीं, और ऋषि आश्रम में रह करके इतने लंबी साल तक, जब हिरण्यकशिपु आया घर में आया पता लगाया श्रीमती कहाँ है, तब उन्होंने नारद जी लेकर उनको छोड़े। नारद जी तो ऐसे है कि वो असुर भी उनको पसंद करते हैं, देव भी पसंद करते हैं, सभी का मैसेंजर है वो, सब उनको विश्वास करते हैं, यही सब बात है, ऐसे ऐसे इंद्र ले गया था कृष्ण ने, और भी गुस्सा हुआ, मैं रखा था मैं, कोई बात नहीं ठीक ठाक है, वो गर्भवती तभी भी थी लगे छोड़, तो उनके सामने और गर्भ पोषण हुआ और उनके सामने जन्म हुआ। इसलिए तो इसलिए भक्त तो पहले से थे, तो अभी हिरण्यकशिपु जो उनके प्रकार फटकारा, जो उनको गाली दिया, अत्याचार शुरू किया मारने के लिए, तब क्योंकि जन्म से भगवान उनके साथ थे, और कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण ग्रह लगा था जन्म के समय से, कृष्ण उनमें हमेशा रहते थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था प्रहलाद को, कोई खेल कूद में कोई इच्छा नहीं था उनको, क्योंकि कृष्ण के साथ रहते थे। अब कृष्ण जिनके हमेशा साथ रहते हैं उनको आज इस प्रकार के व्यवहार किया, पटका दिया, गाली दिया, मार दो ऐसे करता है तो भगवान को सहन होगा, उठ करके थप्पड़ मारे वहीं पे तो क्या मेरे। लेकिन भगवान तुरंत आवेश में आके हिरण्यकशिपु को वहीं पे मर्डर कर सकते थे इन दैट स्पॉट, लेकिन प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ दिए नहीं, वो रोकते हैं। तो डेली डेली जो जो कार्य करता था प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने, भगवान तब भी गुस्से होकर आते थे कैसे ऐसे कर सकता है, प्रहलाद हार जाते नहीं प्रभु नहीं मैं ठीक हूं अच्छा आपके, तो चांस ही नहीं देते थे, भगवान आते थे गुस्सा करके लेकिन भक्त उनको चांस ही नहीं देता, नहीं नहीं हम लोग क्या करें, जो भक्ति होता है तो ही भाव उनमें होता है, इतने सहनशीलता होता है, इतने उदारता होता है। आप सुने होंगे जेसस क्राइस्ट थे, उनको विरोध करने वो अच्छा करते थे लोगों का, लेकिन उनको सहन नहीं हुआ, कुछ पॉलिटिकल लोग उनके पीछे पड़े, उनको मार देने के लिए वो अंततः क्रूसीफाइड किए, उनको बांध करके टांग दिए ये था ना एक क्रस में लगा करके उनके पैर में हाथ में सब खिल ठोक दिया गया। अंदाज करो कितनी भयानक यंत्रणामय स्थिति, दोनों पैर को दोनों हाथ को ऐसे करके खिल ठोक दिए, जिंदा मरे नहीं उन्होंने, जीवित अवस्था में खिल ठोक दिए, मुंह ऐसे लटक गया उनका, ऐसे रख दिए। तभी भी इसी अवस्था में जीसस ने प्रार्थना केवल हे प्रभु ये अज्ञानी है, उनको सद्बुद्धि दो, उनकी गलती माफ कर दो। कितने बड़ा मांग बताओ, जो बदमाशी गाली दे करके आप उनका रंच भर गलती नहीं किए थे, आपको उठा करके खिल ठोक दे, इसे मार दे, मरते दम से उनका भी कल्याण चाहे, भगवान से उनके भलाई के लिए प्रार्थना की, ये भावना। तो ऐसे ऐसे जो और भक्त होते हैं तो उनका भावना ऐसा रहता, कभी महाशत्रु हुए फिर भी उनके प्रतिशोध लेने का भावना तो मन में होगा ही नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, प्रतिशोध का भावना तो आ ही नहीं सकता, नेवर। ये भागवत में कई जगह में उसका प्रमाण है। तो प्रहलाद महाराज कैसे कहेंगे पापा ने ये सब गाली दी, वो लोग मार रहे उनको बदला लो, भगवान जो गुस्से, नहीं 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 नहीं, अज्ञानी है बेचारे, वो अपना काम कर रहे, मेरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपके गोद में बैठा हूं, नथिंग हैपन्स टू मी, कुछ नहीं होता। और कोई सोचेगा कि आप तो पापा के गोद में बैठा है, गोविंद के गोद में बैठा, लेकिन वो मार पीट रहे तो गोविंद को लगता है, बोले नहीं आप परम ब्रह्मण है, आप कहाँ नहीं है, आप सीमा ही नहीं है आपके, ये जो मार रहे हैं वो भी आप ही है, वो जो अस्त्र है वो भी आप है, जो उठाकर फेंक रहे हैं वो भी आप है, तो आपने आपको कैसे हो सकता है कष्ट, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको कोई कष्ट का सवाल नहीं, और मैं आपके गोद में हूं, ये मूर्ख ऐसे मूर्खता से भावना तो उनके प्रति ऐसे ऐसे मत। तो प्रहलाद महाराज हमेशा ऐसी प्रार्थना ऐसे विद्वेष भीन भाव में रहे, तो भगवान को कभी उनके क्रोध प्रकट करने का चांस ही नहीं दिए। लॉन्ग टाइम तक उन्होंने हर क्रिया में क्रोधित होते थे, अरे मेरे भक्तों, क्योंकि भगवान अपने प्रति कटुता को सहन भले कर ले, भक्त के प्रति अपमान कतई सहन नहीं कर सकते। भक्त के प्रति अपमान होने से भगवान तो कभी नहीं छोड़ेंगे, बहुत क्रोधित होते। अरे प्रहलाद जैसे भक्त, उनके ऊपर अत्याचार, छोटे प्रहलाद को भगवान सहेंगे, वो तो इमीडिएट गुस्से होकर आते हैं, लेकिन वो क्या करे, वही बंद करा देता है, नहीं प्लीज प्लीज, अब क्या करे। चैतन्य महाप्रभु यदि भी साक्षात भगवान और अस्त्र धारण नहीं कि नमो महावदान्याय, महावदान्यावतार में भी नित्यानंद प्रभु को जब पत्थर फेंके, वो तो चक्र आह्वान किए, बोले महा गला काट दूंगा, आज ही मार डालूंगा तुझे, मर्डर कर दूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु जब पर पड़े, बोले नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, चक्र फक्र मत करो, दया करो, ये मुझे मारे कोई बात नहीं, मार खा कर भी ऐसे नित्यानंद प्रभु होते हैं, बोले उनको फिर भी प्रेम दान दे। स्वयं सर फट चुका था लेकिन फिर भी प्रार्थना के, बोले नहीं ऐसा मत करो। तो इसी प्रकार भावना भक्तों के होता है। तो प्रहलाद महाराज के अंदर भी तो यही भक्ति है, विष्णु भक्ति यही भावना है। तो इसलिए हरेक सिचुएशन में वो बोलते थे नो नो प्लीज प्लीज। अब भगवान ने क्या करे, ऐसे दांत गणों ने आते चुप बैठ जाते, प्रहलाद मना करता है, वापस जाते हैं। भगवान के अंदर सारे सद्गुण हैं लेकिन भक्तों के ऊपर अपव्यवहार सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्रोधित होकर आते हैं, अब ये निकलने नहीं देता। तो इसलिए सारे स्टक पड़ा, जो एक बार भगवान का क्रोध होता है तो क्रोध होता ही मिटता ही नहीं, भगवान तो नित्य है अविनाशी है, जो उनका लीला होता होता है। तो अभी तक कितने कितने चांस मिला, लेकिन हमेशा प्रहलाद ने उनको रोक के रखा था। आज ही ऐसे एक ही चांस मिला, जब उनके हिरण्यकश्यप ने उनको पूछा, भाई तू इतने निडर होकर मेरा सामने खड़े है, किसका बल से तुझे इतने पावर कहाँ से मिल रहा है बताओ। अरे मैं आंख उठाकर देखूं तो संसार के बड़े बड़े लोकपाल देवता तक कांप जाते हैं, लेकिन तू मेरा सामने ना डरता ना मरता है ना भागता है, कुछ नहीं करता, कैसे किस बल पर तू ऐसे बलवान है। जब पूछा, बोले सप्लाई तो, बोले पावर तो काट दो, जैसे किसी का वो गड़बड़ी काम करता ना, चोर भी पहले लाइन काट देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, फोन लाइन भी काट देते हैं, तभी जाकर के आतंकवादी करते हैं ना। तो निशंग हिरण्यकशिपु सोचा मैं गला काटूं, कोई सप्लाई तो काट दूं। पहले पूछा तो कहाँ से तुझे सप्लाई मिलता बताओ, पावर कहाँ से मिलता तुझे। प्रहलाद महाराज निडर होकर बोले पापा सप्लाई तो एक ही जगह से आता है, पावर हाउस से। भवतस्य, केवल मेरा नहीं, मेरे से भी वहीं से आता है, आपको भी यहीं से मिलता है। मेरे से तो मैं स्वयं बड़ा, मैं कैसे मिलूंगा उनसे। मिलता है तो बोला नहीं, कहाँ से मिलता है। बोले केवल आपको नहीं, मेरे नहीं, संसार में जितने बलवान है सभी को वहीं से मिलता है सप्लाई, वहीं से मिलता है। केवल शारीरिक बल नहीं, मनोबल, इंद्रिय बल, सारे बल वहीं से मिलता है। बोला कौन है ये? वो बोलते विष्णु। ओरे चिल्ला रहे विष्णु, वो मेरे विरोधी है, वो देने पर भी मैं नहीं लूंगा, हमारा बनता नहीं। वो अगर प्लीज लो करके दा तब भी फेंक दूंगा, लूंगा नहीं उनसे, और वो देगा भी नहीं। आप बोलते उनसे लेते हैं, आप प्रहलाद महाराज हंसने लगे, बोले आप तो मूर्खता है, नहीं मानते, आप लेते उन्हीं से है, उन्हीं से लेकर उन्हीं से झगड़ते हैं, यही आपका स्वभाव है। तो हिरण्यकशिपु बोला तू बेसर टुक बात करते मारो। तो अच्छा तो बताओ ये रहता का, मैं तो ढूंढता हूँ उनको बदला लेने के लिए, वो कहाँ है थोड़ा बताओ। हिरण्यकशिपु बोला मैं तो ढूंढ के देख लिया, कब मिलता नहीं, शायद उनको पता होगा, उसको सप्लाई मिलता है एड्रेस शायद पता होगा। तो बोला बताओ फिर उनका एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहते हैं। सर्वत्र, हाँ सब जगह में, चारों ओर देखा। बोला यहाँ तो कोई मेरे घर में तो कोई दिखता ही नहीं, यहाँ है ना है। तो उनका सामने पिलर होला खम्भे में है, जिसे पूछा खम्भे में है करके प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले दृश्य तो देख ही रहा हूँ, बैठे तो हैं, प्रणाम किया प्रभु। दंडवत प्रणाम। फिर हिरण्यकशिपु बोला व्हाट, ये प्रणाम कर रहा है, मतलब उसको देख ही रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। अरे मुझे शायद नंबर लग गया चश्मा, हाँ मैं चश्मा नहीं लाया, वो बच्चा है उसको दिखाई पड़ रहा, मुझे नहीं दिख रहा। हो ना हो, जब दिख रहा है पहले उसको मारता हूँ, बाद में उसको मारूंगा। आप तलवार तो निकाल लिया था प्रहलाद को मारने के लिए, बोला तलवार से तो प्रहलाद का गला काटूंगा, ये विष्णु को ऐसे मुट्ठी मार के मार दूंगा मुक्का में। तो खंभे के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, तब भगवान ने देखे कि आज मुझे प्रहलाद चांस दिया। बोला कि दृश्यते, ए बैठे हैं प्रभु, आप बैठे हैं, पापा पूछ रहा था आपके बारे में, आप तो ही मैं देख रहा हूं प्रणाम के। आज रोके नहीं, आज ही वे रोकटक भगवान निकले वहां से। बोले आज मौका मुझे मिला है, सारे गुस्सा आज टक निकालूंगा, तो इसीलिए शक निकाल रहे हैं। यद्यपि निकले वो मार डाले, हिरण्यकशिपु को मारे, उनके बाकी लोगों को मारे, मारने के बाद भी गुस्सा नहीं जाता, उनके आंत को निकाल करके माला पहन लिए, सारे रक्त फक्त इसम कर डाले, फिर भी जब गुस्सा होता ना मर जाने के बाद, और फेंको नहीं, उनके डेड बॉडी को जब आप देखेंगे, जब कंसबद्ध के एपिसोड में भगवान कृष्ण ने कंस को तो जब मंचा के ऊपर जो कू जंप किए, तभी कंस हार्ट अटैक हो गया था, कंस का हार्ट फेल तभी हो गया था, अपने इस पोजिशन में मर गया था। लेकिन उनके डेड बॉडी को चुटी फेंके, नीचे फेंके उसके ऊपर कूदे, उसको मारे, लात मुक्के मार करके उनके चोटी पकड़ करके घिसट रहे थे। अरे पूरे संसार के सम्राट, इतने बड़े महाबली त्रिलोक विजयी, तुम्हारे खास मामा, इसको ऐसे पब्लिक के सामने ऐसे, उसको मर चुका है फिर भी सब भले, यार छोड़ दे। लेकिन भगवान गुस्से में थे ना, क्यों गुस्से में थे, क्योंकि उनके पिताजी को गाली दे रहा था, उनके भक्तों को गाली दे रहा था, इसलिए इतने गुस्से में थे, डेड बॉडी को भी छोड़ नहीं रहे थे। तो नरसिंह भगवान के भगवत स्वभाव है, भगवान के स्वभाव, भक्तों के ऊपर इतना गुस्सा, तो गुस्सा उतर देते हैं उनका। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु मर जाने के बाद भी आंतड़ी निकाल करके पहन लिए, उसको ब्लड निकाल लिए, ऐसे करे और उनके ऐसे गुस्सा के सारे लोगों को मार डाले, फिर भी गुस्सा नहीं जाता। ऐसे मुखबत ध्यान करते हैं, ऐसे चित्कार करते हैं, और ये विचार रहस्य को देवता कहां जानेंगे, ये तो भक्त और भगवान के बीच की आपने व्यवस्था है, वो तो प्रहलाद और नृसिंह इन दोनों के बीच में उनके अंडरस्टैंडिंग, उनकी बातचीत है। तो इसलिए प्रहलाद अभी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ आप गुस्सा करते हैं, लेकिन बेचारे डरे हुए आपके पार्टी के लोग हैं, अब ऐसा मत कीजिए। अब तो काम निपट चुका है, अब प्लीज शांत हो जाइए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने जो देवताओं के द्वारा प्रार्थित हुए थे नृसिंहदेव को शांत करने के लिए अभी तक स्टेप बाय स्टेप जा करके बिल्कुल सिस्टमेटिकली अभी आप्रोच शुरू किए कि इसी कारण से वो आपके कृपा के पात्र है, आपके लोग है, आपके अनुजाई है, आपके आज्ञा पात्र है, विधि करा है, सतगुणी है, इसलिए उनको आप डराओ मत, क्योंकि जिसके लिए डरावना था वो तो सब गए है ही नहीं। तो प्लीज अभी बी काइंड एनफ, अब शांत हो जाइए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज आज के दो श्लोक में आपने सब्जेक्ट को शुरू किए, अभी कल देखें किसी प्रकार फिर वो क्या कह रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकशिपु महाराज की, भगवान नृसिंहदेव की, समवेत भक्त वृंद की,
संध्या के समय साढ़े 6 से 8 और कल्पाचार्य प्रहलाद महाराज का उठाइएगा। हरे कृष्ण।